नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 47,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी जारी करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर बार बार हंगामे के कारण 2 बजे तक स्थगित रहने के बाद शुरू। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों में किए गए हमलों में महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। मौसम विभाग का कल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का अनुमान। बाजल में स्विस ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के क्रिश्चियन केया और रास्मस केया से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर असम जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान प्रधानमंत्री 47,008 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री कोकराझार में 4,570 करोड़ रुपए की कोई परियोजनाओं का शुभारंभ तथा भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री सड़क अवसंरचना परियोजना असम माला 3.0 और BTC क्षेत्रों के लिए 4 फ्लाईओवर और 2 पुल सहित 6 सड़क परियोजनाओं का भी आधारशिला रखेंगे। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री कोकराझार में रेलवे आवधिक ओवरहॉलिंग कार्यशाला की आधारशिला रखेंगे और 3 नई ट्रेनों कामाख्या चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस और नारंगी अगरतला एक्सप्रेस का भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कोकराझार के ग्रीन फील्ड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री लगभग 19,680 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य के चाय बागान श्रमिकों को प्रतीकात्मक रूप से भूमि पट्टा सौंपेंगे और 150 मेगावाट की कोपिली जलविद्युत परियोजना का लोकार्पण करेंगे। कल प्रधानमंत्री सिलचर में 23,550 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजना का भी आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अमीनुल हक जद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
प्रधानमंत्री का कोकराझार दौरा खराब मौसम के कारण रद्द हो गया है। प्रधानमंत्री गुवाहाटी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री करीब 9 करोड़ 32 लाख किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 18,640 करोड़ रुपए जारी करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही रसोई गैस LPG सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने विरोध कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी नेता संसद परिसर में खाने पीने की चीजें लाकर और व्यवधान उत्पन्न करके अनुशासनहीनता का प्रदर्शन कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी में अब कोई नहीं बचा है इनका नेता को समझाने के लिए, उल्टा उनका नेता के साथ साथ सारे कांग्रेस के सदस्य भी बिगड़ गए हैं, शर्मसार कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और कहना चाहता हूँ अब भी समय है, सुधर जाओ नहीं तो जनता आपको पनिशमेंट देगा, ये आप लोग सोच लीजिए।
पीठासीन अधिकारी ने अनुदान की पूरक मांगों वर्ष 2025-26 के दूसरे सत्र पर चर्चा फिर शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गए। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य अपने मुद्दे उठाने के लिए खड़े हो गए। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है, इसमें सदस्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्य व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं जो संसदीय मर्यादा के विरुद्ध है।
आप कहते हैं कि सदन में बोलने का अवसर दिया जाए, अपनी बात को रखने दिया जाए और सदन में जो अवसर दिया जाता है उस समय आप बोलना नहीं चाहते, सदन को गतिरोध करना चाहते हैं, ये संसदीय मर्यादा अनुरूप है। प्रश्नकाल के बाद आपको कोई विषय उठाना है तो जब उठा सकते हैं।
सदन की कार्यवाही फिर शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस समय अनुदान की पूरक मांगों का जवाब दे रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे की समयबद्धता में सुधार का जिक्र करते हुए बताया कि कुल 77% रेलगाड़ियां निर्धारित समय पर चल रही हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समयबद्धता का मापन निर्धारित समय सीमा के भीतर पहुंचने वाली रेलगाड़ियों के प्रतिशत से किया जाता है। उन्होंने बताया कि रेलवे ने अपने विशाल नेटवर्क के प्रदर्शन में सुधार के लिए कई रणनीतियां अपनाई हैं।
आज करीब 25,000 गाड़ियां डेली चलती है रेलवे के नेटवर्क पे, फिर भी वी आर एबल टू नाउ अचीव 24 डिविजन्स ऐसे हैं जिसमें 90% से अधिक पंक्चुअलिटी आ चुकी है और 43 डिविजन्स हैं जिसमें 80% से अधिक है, 8 डिविजन्स हैं जिसमें 95% से अधिक पंक्चुअलिटी आ चुकी है। मदुरई डिविजन, जोधपुर डिविजन, हुबली डिविजन, भावनगर, कोटा, अजीत नगर, रतलाम और अजमेर।
वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती और एक अलग पहचान मिली है। राज्यसभा में आज पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया।
7 अगस्त 2015 में हैंडलूम दिवस मनाने का शुरुआत किया। यह एक संदेश था कि देश अपने बुनकरों के योगदान को अब खुले दिल से स्वीकार रहा है। आज दुनिया का 95% हैंडलूम भारत में ही बनता है और ये वीमेन लेड सेक्टर है, 70% महिलाएं ही इसमें भागीदार है।
गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने पिछले वर्ष अचानक आई बाढ़, बादल फटने और चक्रवात मोन्था से प्रभावित आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और जम्मू कश्मीर के लिए 1,912 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। ये अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF में जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान ने काबुल, कंधार, पक्ती और पक्तिका सहित अफगानिस्तान के कई प्रांतों पर सैन्य हमले किए। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने आज इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। तालिबान ने हमलों को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर फिर से बमबारी की है। श्री मुजाहिद ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कुछ स्थानों पर घरों को निशाना बनाकर हमला किया गया जिनमें बच्चे और महिलाएं मारे गए। सेना ने रेगिस्तानी इलाकों को भी निशाना बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सैन्य विमान ने कंधार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास निजी विमानन कंपनी काम एयर के ईंधन भंडार पर भी हमला किया जिससे भंडार में आग लग गई। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इससे वैश्विक बाजारों में तेजी आ गई है। तेल की कीमतों में भारी उछाल आ रहा है जिससे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को आपूर्ति बनाए रखने के लिए आपातकालीन भंडार का उपयोग करना पड़ रहा है। ईरान के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यह संघर्ष लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में बदल सकता है जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो सकता है। तेहरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य पर उसका अब भी नियंत्रण है और उसने अमेरिका तथा इसराइल से जुड़े आर्थिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दी है। इस बीच दुबई में एक विस्फोट के बाद शेख जायद रोड की दिशा से सायरन की आवाजें सुनाई दी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
दुबई के अधिकारियों का कहना है कि आज शहर के कुछ हिस्सों में सुनाई देने वाले विस्फोट हवाई सुरक्षा प्रणालियों द्वारा हमलों को विफल करने के कारण हुए थे। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दुबई के अधिकारियों ने सभी नागरिकों के लिए एहतियाती निर्देश जारी किए हैं। हवाई यात्रा की बात करें तो भारतीय विमानन कंपनियां एयर इंडिया और इंडिगो धीरे धीरे पश्चिम एशिया के लिए उड़ानें बहाल कर रही हैं। एयर इंडिया समूह वर्तमान में इस क्षेत्र के लिए 78 निर्धारित और अनियमित सेवाएं संचालित कर रहा है। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से आने जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त उड़ानें भी उपलब्ध हैं। कनेक्टिविटी को धीरे धीरे बहाल करने के साथ इंडिगो ने 9 पश्चिम एशियाई गंतव्यों के लिए सेवाएं फिर से शुरू कर दी है। अमीरात के अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
बांग्लादेश ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ईंधन ला रहे अपने जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित गुजरने देने का ईरान से अनुरोध किया है। ऊर्जा मंत्री इकबाल हसन महमूद ने कल कहा कि बांग्लादेश ने ईरान से अनुरोध किया है कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य से ईंधन और ऊर्जा उत्पाद ला रहे बांग्लादेशी जहाजों को सुरक्षित आने दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने तनाव बढ़ने और नागरिकों की मृत्यु तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचने पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तथा वस्तु और ऊर्जा का निर्बाध परिवहन भारत की उच्च प्राथमिकता बना हुआ है। उन्होंने शांति और स्थिरता के लिए ईरान की प्रतिबद्धता व्यक्त की और संवाद तथा राजनयिक माध्यमों से समाधान का आग्रह किया। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद आपूर्ति विभाग ने रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल का बेहतर तरीके से उपयोग करने का आग्रह किया है। विभाग ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना में कही गई बात का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया है कि देश में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण स्थिति अस्थिर बनी हुई है। इस अनिश्चितता को देखते हुए आपूर्ति विभाग ने जनता को इन उत्पादों का सही तरीके से उपयोग करने की सलाह दी है। दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और पीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। वहीं केरल सरकार ने लोगों से रसोई गैस की बुकिंग में अफरा तफरी न करने का आग्रह किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सूत्रों ने बताया कि तेल कंपनियां स्थिति को संभालने में सक्षम हैं और बुकिंग के अनुसार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। सामाजिक और न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य ट्रांसजेंडरों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में संशोधन करना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज सुबह तिरुमला मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित और समृद्ध रूप से प्रगति कर रहा है। पश्चिम बंगाल में संग्रामी जौठा मंच और सरकारी कर्मचारी परिषद सहित कई कर्मचारी संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ते के तत्काल भुगतान की मांग को लेकर आज हड़ताल का आह्वान किया है। नबन्ना के वित्त विभाग की कल जारी अधिसूचना के अनुसार यदि कोई कर्मचारी बिना किसी विशेष कारण के कार्यालय से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सेवा पुस्तिका में लाल निशान लगाया जाएगा और एक दिन का वेतन काटा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिली के राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति कास्ट के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई माल ढुलाई में 3.5% की वृद्धि दर्ज की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्राधिकरण ने कहा कि प्रगति मजबूत कार्गो बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के क्रिश्चियन केया और रास्मस केया से होगा। रंकीरेड्डी और शेट्टी ने जापान के हिरोकी ओकामुरा और क्योही यामाशिता को कड़े मुकाबले में पराजित किया। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 47,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी जारी करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर बार बार हंगामे के कारण 2 बजे तक स्थगित रहने के बाद जारी। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों में किए गए हमलों में महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। मौसम विभाग का कल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का अनुमान। बाजल में स्विस ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के क्रिश्चियन केया और रास्मस केया से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।